परम पूज्य सद्गुरुदेव रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आज पुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण के कथा पूर्णता की तरफ जो अग्रसर है, उस पूर्णता के क्रम में कथा के अंतर्गत कुछ जीवन के आवश्यक तत्व हैं जो हमारा उद्धार करते हैं, जो पुराणों के सार स्वरूप है। प्रारंभ में सृष्टि बतलाई गई मनुष्य रूपा के द्वारा, उनसे अनेक राजाओं का वर्णन हुआ, राजाओं के चरित्रों का वर्णन हुआ, वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन हुआ, ब्राह्मण का चरित्र कैसा होना चाहिए, कौन ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय कौन है, तो क्षत्रियों के कर्म जो प्रजा के रक्षा में तत्पर हो और युद्ध में पलायन न करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्म वेद की उपासना करे, साथ ही में ब्रह्म तत्व को गतार्थ कर ले अपने जीवन में, वह ब्राह्मण है। वैश्य वह है जो कृषि कार्य करता है, वाणिज्य व्यापार करता है और गाय इत्यादि की रक्षा करता है, पशुपालन करता है, वह वैश्य है। उसका नाम वैश्य क्यों है, तो कहा कि विष प्रवेशने धातु है, जिसका वेदादि में प्रवेश है अर्थात वैदिक कर्मों में अधिकार है, वह कर्म दूसरे के लिए नहीं करा सकता है, इसलिए वहां तक वैश्य कहा। विषह भाव कर्म वा वैश्यम, जिसको वेदादि मार्ग में प्रवेश है। साथ में जो शूद्र है वो सेवा का अधिकारी है, सेवा मतलब समाज की सेवा करके ही वो जीत लेता है, जैसे स्त्री अपने पति को जीत लेती है, उसी तरह से जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है वह सामाजिक सेवा करके और समाज को जीत लेता है, उसे वेद पढ़ने और मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां नहीं जाता है तो भी उसको वो फल मिल जाता है। जैसे घर में माता भोजन बनाती है और पुत्र को भोजन बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसको वो प्राप्त हो जाता है, वैसे ही उसको वो प्राप्त हो जाते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपने अपने कर्मों को करके प्राप्त होता है, वो शूद्र को भी अपने कर्म करने से वो प्राप्त हो ही जाता है। इसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम व्यवस्था है। जैसे मुंह का काम बोलना है वह मुंह बोलेगा और खाएगा, हाथ का काम करना है वो करेगा, पैर का काम चलना है वो चलेगा। यदि हमारा मुंह भगवान की स्तुति करता है तो पैर भी चल करके मंदिर तक जाता है, हाथ भी भगवान के लिए पुष्प चढ़ाता है, कान भी भगवान का कीर्तन सुनता है, इसी तरह यह पूरा जो भूमंडल है वह भगवान का एक शरीर है, श्री विग्रह है। इसमें यदि किसी भी अंग के साथ किसी का भी खटपट होता है तो भगवान को कष्ट होता है। जैसे हमारे ही अंग हमारे अंगों से टकराएं और चोट लगे तो आपस में कष्ट होगा, इसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार रह करके व्यक्ति अपने अपने कर्मों को करके और अपने अभिष्ट को मानव जीवन को सफल कर लेता है। यह पुराणों में सभी पुराणों का सार ही है, समझ लेना चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म के लिए कर्म से ही फल प्राप्ति होती है। विश्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, अपने अपने कर्मों को करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, और यदि दूसरे को कर्म को करने चलता है तो अपना कर्म तो त्याग करता है, दूसरे के कर्म में उसे निपुणता नहीं आती। आधुनिक लोकतंत्र की तरह से जो अध्ययन में निपुण है उसको अध्ययन कराओ और जो पाक कार्य में कुशल है उसको पाक कार्य में लगाओ, नहीं तो पुरुष को आप पाकशाला का ट्रेनिंग दोगे, रसोईया बनाओगे, और स्त्री को ऑफिस दे दोगे तो उसको 6 महीने की ड्यूटी लीव, छुट्टी लीव देनी पड़ेगी, और वो घर में रहती थी तो उसकी सेवा अपने आप हो जाती थी, माताएं कर देती थी। तो जो जहां है जिसमें निपुण है उसको वही कार्य दिया जाए, यह संयोजन है और परमात्मा ने यह दिया है, यह परंपरा से हमको प्राप्त है। जो गांव में रहने वाले कुंभकार हैं, कुंभ बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वो बर्तन बनाकर के ही जी लेते हैं और उनके यहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो धंधा आप टेंडर के द्वारा किसी दूसरे जाति वाले को दे दोगे तो वो वहाँ खाने बिना मरेंगे, और उनको कहोगे कि आप ट्रेनिंग में चलो पढ़ाने के लिए तो वो उनके लिए विपरीत हो जाएगा। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है, व्यवस्था है, उसके अनुसार कार्य करना यह हरि की इच्छा है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसी के अनुसार तुम्हें कार्य करना चाहिए। नहीं तो एक घटना आती है कि पुरुष चला गया भोजन बनाने के लिए और स्त्री चली गई अपना ऑफिस के लिए, उसको ऑफिस से पैसा नहीं मिल पाता था तो इसलिए वो आभूषण बेचा करती थी, और पुरुष जो है घर के बर्तन और होटल से भोजन ला करके खिलाना चालू किया, और दोनों ऐसे करते करते घर की स्थिति खराब हो गई। अंत में किसी तीसरे ने संभाला और कहा कि प्रभु ये सब मत करो, फिर दोनों अपने अपने स्वभाव पर आ गए। इसलिए जो अपना स्वभाव है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो नींब का प्रयोग जो पुराने जमाने में होता था जिन दवाइयों में, वो आज भी हो रहा है। यदि नींब अपने स्वभाव को छोड़ दे तो क्या होगा, गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या होगा, सूर्य उदय होना छोड़ दे तो क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा में कभी लड़ाई नहीं हुई कि हम जो है रात को निकलेंगे तुम दिन को निकलना, थोड़ा शिफ्ट बदल लो, क्योंकि वहां स्वाभाविकता है। तो प्रकृति के नियमों में जो स्वाभाविकता है, जो ईश्वर प्रदत्त है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। लेकिन यह भी बात है कि यदि ब्राह्मण अपना कार्य न करता हो तो वो पतित हो जाता है, अधम हो जाता है, इसलिए उसे भी अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। और यदि शूद्र भी अपना कार्य करते हुए हरि चिंतन करता है तो अगले जन्म में उसे ब्राह्मण का स्वरूप मिलता है, वो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, उस जन्म में नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में वो भगवान उसको दे देगा उसके गुण कर्म के अनुसार कि उसने अपने कर्म के साथ न्याय किया है। यह तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, नहीं तो जाति बदलने लगे तो एक मनुष्य सुबह उठ करके अपना लैट्रिन साफ करे तो दूसरी जाति का हो जाएगा, कपड़ा साफ करे तो धोबी हो जाएगा, और जूते को पॉलिश करे तो दूसरी जाति का हो जाएगा, तो ऐसे जाति दिन में 4-5 बार बदलने लगेगी। तो इसलिए जाति की एक मर्यादा है, एक काल है, उसके अनुसार वो परिवर्तन होते रहते, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। यदि हमारे आपके हाथ में हो तो हम सब धनी घर में पैदा लें, कोई कंगाल ना हो। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे भावनाओं के अनुसार ही हमें सिद्धि होती है। इसलिए ईश्वर ने जो हमें प्रदान किया है उसका हमें स्वागत करके, सत्कार करके वर्तमान में जीना चाहिए कि हमें जो आश्रम मिला है, जो वर्ण मिला है, जो माता पिता के द्वारा क्रिया कर्म मिले हैं, उसे हमें करना चाहिए। आगे चल करके इन्हीं कर्म की बात आती है, फिर योग की बात आती है और संन्यास की बात आती है। ये ब्रह्मचारियों के कर्म क्या हैं? तो बतलाया कि ब्रह्मचारी लोग जो है विद्यार्जन उनका प्रथम कर्तव्य है, व्रत का पालन कर्तव्य है, स्त्री से दूर रह करके स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के चिंतन करेंगे तो गृह में आसक्त हो जाएंगे, फिर उनको विद्या नहीं रहेगी। महर्षियों ने कहा गृहासक्तस्य नो विद्या, जो गृह में आसक्त है उसको विद्या नहीं होती है, क्योंकि गृह का रजना ना जंजाला देयति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ के जिम्मे नाना प्रकार के जंजाल है, और विद्यार्थी यदि गृह में पड़ जाएगा ब्रह्मचारी तो उसकी विद्या नहीं फलित होगी। बहुत बड़े ऋषि थे, श्रृंग ऋषि, श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी थे, और जंगल में रहा करते थे, उन्होंने अपने माँ को भी नहीं देखा था। जैसे उत्पन्न हुए उनके माँ ने शरीर छोड़ दिया था, तो माँ को भी नहीं देखा था और पिताजी के साथ रहते थे और बलकल वस्त्र पहनते थे, जंगली वृक्षों के वस्त्र पहनते थे। लेकिन जब उनको लाना हुआ तो विचार किया गया कि वो कैसे आएंगे, तो कुछ जो है बाजारू स्त्रियों को भेजा गया वहां। तो स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के वशीभूत हो करके उन्हें राज्य में लाया गया। तो जो स्त्रियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है, जो मोह उत्पन्न हो जाता है उन्हें देख करके, इसलिए विद्यार्थी में पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। आजकल के विद्यार्थी सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, इससे उनका आकर्षण होता है, इसलिए विद्या नहीं पढ़ पाते हैं। कहा कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी के लिए मुंडन करा के रहना चाहिए या तो जटा धारण करके रहना चाहिए। आप मुंडन जटा मत करो, लेकिन आप दिन में 25-30 बार कंघा मत करो, बार बार दर्पण में मुंह मत देखो हम कैसे हैं, क्योंकि आपको श्रृंगार से क्या मतलब, आपका श्रृंगार ब्रह्मचर्य है। आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आपका ललाट स्वयं चमकते रहेगा, वही आभूषण है ब्रह्मचारी का, सदाचार ही उसका आभूषण है। विशेष करके आजकल कम से कम विद्यार्थी के लिए कहा, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम काकचेष्टा अपकध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा, जैसे कौवे रोटी के टुकड़े को देख करके झपट मारता है लेने के लिए, वैसे विद्यार्थी को ज्ञान के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति उसे सतर्क हो करके वचन ग्रहण कर लेना चाहिए सेवा करते करते, कि हमारे गुरु जी क्या कह रहे हैं। तो फिर क्या गया, भगत ध्यानम, बकुला जैसे मछली पर ध्यान लगाता है उस तरह से उसे अक्षर का ध्यान रखना चाहिए। श्वान निद्रा, जैसे कुत्ते सोता है और जग जाता है तुरंत, उसी तरह से विद्यार्थी को अधिक निद्रा नहीं लेना चाहिए। श्वान निद्रा तो सही वैसे अल्पाहारी, थोड़ा खाना चाहिए, दो रोटी खा लिया, पेट में यदि चार रोटी की जगह है तो दो रोटी खाना चाहिए, एक रोटी के हिसाब से पानी पी लेना चाहिए और एक रोटी के लिए वायु को आसपास जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। गृहत्यागी, और घर में उसे नहीं रहना चाहिए, घर में रहेगा तो माता पिता का मोह सताएगा, माँ कहेगी बेटा जाने दो आज पढ़ने मत जाओ, आज थोड़ा बरसात हो रहा है यही रह लो, आज थोड़ा ये काम पड़ा है चले जाओ, तो इस मोह में वो पढ़ नहीं सकेगा। क्योंकि राजा दशरथ जैसे को राम का मोह सताया, वशिष्ठ जी ने जब कहा कि विश्वामित्र के साथ जाने दो, तुम मोह में पड़ रहे हो, यह तुम्हारा मोह ठीक नहीं है, तो हम सामान्य मानव की क्या दशा होगी भगवान जाने। इसलिए स्नेह में पुत्र लालन करने से अधिक नहीं पड़ता है, इसलिए बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए। काय लालये पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, खूब दुलार करना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़ये, ताड़न का मतलब यहाँ खूब मारना नहीं है, ताड़न का अर्थ उसकी देखभाल करना चाहिए। 5 से लेकर के 15 वर्ष तक उसकी चेष्टा क्या है, कैसे रहता है, कैसे क्या कार्य करता है। तो अभी इस उम्र में विद्यार्थियों का सांवेगिक विकास होता है, किशोरावस्था आती है, उसमें वो चंचल होता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों में भेज दिया जाता था कि वहां उसको स्त्री से संपर्क नहीं रहेगा, यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो जटी या मुंडी रहेगा, तो उसको संसार में मन नहीं लगेगा, और भिक्षा मांगेगा तो वैसे विनम्र वृत्ति उसकी हो जाएगी, वहां कोई स्त्री है नहीं, गुरुकुल होते थे जंगल के पास में, समिधा लाएगा लकड़ी, आचार्य की सेवा करेगा और उसी ब्याज से, सेवा के ब्याज से गुरु का जो गुण है वह विद्यार्थी में आ जाएगा। आज विपरीत स्थिति बन गई है, स्कूलों में विद्यार्थी जाते हैं और वहाँ अब चरित्र इस तरह का नहीं रहा, यह कष्ट का विषय है, बदला, परिवर्तन बदला, अंग्रेज गया। लेकिन फिर भी ऐसे आश्रमों में जो विद्यार्थी आकर के और सेवा करके ग्रहण कर सेवा करके विद्या ग्रहण करते हैं, उनका सर्वांगीण चरित्र विकास होता ही है, मैंने देखा है। हमारे यहाँ भी आश्रम में विद्यार्थी सुबह से लेकर स्वच्छता से लेकर के रात तक की दिनचर्या को करते हैं और वो स्वावलंबी हो जाते हैं। उनको रोटी भी बनाना हो तो बना लेंगे, आपकी सेवा करनी है तो कर लेंगे। लेकिन आज बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के होते हैं वो माता पिता के पैसे से खूब लहर कर रहे हैं, उनमें व्यक्तित्व विकास तो होता ही नहीं, भले वो पैसा कमा ले लेकिन यदि उन्हें रोटी बनाने वाला कोई ना मिले तो उनका जीवन दुभर हो जाएगा। बाजार पर ही आश्रित रहते हैं, बाजार में आप जान रहे हैं जहर बिक रहा है, फास्ट फूड जो है जहर है, स्वीट पॉइजन है। जिसने 15 साल तक खा लिए उसके बाद उसके वजन घटने नहीं है और उसकी जीभ भी मानने वाली नहीं है। तो अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी के धर्म बतलाए, गृहस्थ के धर्म बतलाए, गृहस्थ धर्म का मैंने वर्णन कर दिया है। वानप्रस्थी के लिए कहा कि गृह में से मोह त्याग दे और जंगल के पास जाकर के रहे। अब जंगल तो नहीं रहे राम जी की कृपा से, लेकिन जो वानप्रस्थ आश्रम है, जैसे कि यहाँ महाराज श्री का वो आश्रम चलता है, हाथ क्या नाम है उसका आश्रम का नाम है जो तपोवन और ये पानखर, पानखर की हास मतलब पतझड़ की हास, जहाँ पतझड़ भी हंसता हो, यह कैसी विडंबना है। मतलब पतझड़ में नए कोपल की शुरुआत होती, वो कोपल कैसा है तो वैराग्य का है। संसार में राग होता है और संसार से जब व्यक्ति उपेक्षित होता है उसके पत्ते झड़ जाते हैं तो उसमें विराग उत्पन्न होता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, जो भक्ति है वह व्यक्ति में विराग लाती है और जो विराग है वह जो है व्यक्ति का को ऊर्ध्वमुख करता है और राग अधोमुख ले जाता है। ये बुद्धि के धर्म है, इसलिए विराग होना जरूरी है और विराग से फिर ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, इंद्रिय विजय होता है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। वानप्रस्थियों के लिए बतलाए हैं, तमाम धर्म बतलाए हैं और सन्यासियों के लिए तो भिक्षा करके ही खाना है, उनको अग्नि स्पर्श वर्जित किया है। और सन्यासियों में भी अपने विविध संप्रदाय है, इस संप्रदाय के सन्यासी क्या करेंगे, उस संप्रदाय के सन्यासी क्या करेंगे, लेकिन सन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास, न्यास मतलब त्यागना। जिसने अग्नि तक को छोड़ दिया है वह सन्यास है। अपने से भोजन नहीं बनाना, जो प्राप्त हो जाए उससे खा लेना। परित्यज्य सर्वम व्रजति परिव्राट,